हरे कृष्ण। नहीं तो आजकल के तो शादी के बाद वो पकड़ के हाथ से ऐसे आते हैं, बकरी पकड़ के आए। बहुत पुरानी मर्यादा है, बड़े बुजुर्गों के सामने नहीं आते थे साथ। हमें अपने जीवन में याद है और प्रभुपाद ने शास्त्रों में लिखा है, घर के अंदर माता पिता के सामने स्त्री अपने पुरुष से मुंह ढक के घर में काम करती थी। हमने अपने घरों में देखा है, अपने जीवन में प्रभुपाद ने लिखा है कि दिस वॉज ए कल्चर कि हस्बैंड और वाइफ भी दिन में ऐसे खुले में बात नहीं करते थे बड़े बुजुर्गों के सामने, पेरेंट के सामने, और स्त्री मुंह ढक के काम करती थी सास और ससुर के सामने। उसका फायदा क्या था? झगड़ा नहीं होता था घर में। क्यों भाई, कोई बात पसंद नहीं आई तो छुपे हुए में ऐसे करेगी, देखेगा तो कोई नहीं ना, कोई मुंह थोड़ी उसका देखेगा, तो झगड़ा तो होगा, तो शांति रहती थी घर में। अब खुले मुंह से थोड़ा भी आंख ऐसे की तो पता लगेगा मेरे को देख रही है। ये बहुत पुराना कल्चर था। तो ये भी हमें मालूम है कि बड़े बुजुर्ग बैठते थे, चप्पल पहना होता था उतार के स्त्री हाथ में उठा के जाती थी कि चप्पल का आवाज भी सुनाई न दे। ये बहुत पुराना कल्चर था, ये रेस्पेक्ट का कल्चर था, बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता था। तो ये अच्छी बात है। अभी तो कहते हैं बड़े होंगे तो मुंह ढकना क्या, बहू को ही बाहर निकाले, जान चुके हमारा घर ही अलग खत्म हुआ, हम अपने घर में अलग रहेंगे, कोई जरूरत नहीं है मुंह ढकने की, मुंह तो क्या सर ढकने की जरूरत नहीं। बदल गया जमाना, बदल गया नहीं। हरे कृष्ण। तो दूसरे ने दूसरा प्रश्न क्या पूछा, एक बकेट कुएं से पानी की निकाली, नौ बर्तन भर गए, नौ बर्तन वापस डाले, एक बकेट भी आधी खाली पड़ी थी। ये समस्या है, प्रॉब्लम है, इसका सॉल्व सॉल्यूशन बताओ, इसका हल क्या है, हाउ टू सॉल्व दिस। अर्जुन ने कहा इट्स वेरी डिफिकल्ट, इसको समझ नहीं आता, महाराज से पूछना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। नकुल खड़ा था, महाराज से मिलना है। बोला महाराज तो भगवान के ध्यान में है, मैं सेवा करूंगा। बोलिए। तो बोला आप सुनिए, सेवा करनी तो बताता हूं। गाय ने एक बछड़ी को जन्म दिया, बछड़ी समझते हैं ना, गाय की बछड़ी और बछड़ा। पर अच्छा किया गाय ने बछड़ी को जन्म दिया, तो दूसरी गाय घर में आई, बछड़ा होता तो परेशानी होती। पुराने जमाने में खेतों में अगर होता था मेल काफ होता था तो खेत में काम आता था। अब तो खेत है नहीं, ट्रैक्टर्स आर द बुल किलर्स, ट्रैक्टरों ने सारे बैलों को मार दिया। प्रभुपाद से दिस ट्रैक्टर्स आर द बुल किलर्स, दे आर ट्रैक्टर सुर, ये बुल मारने के लिए ट्रैक्टर सुर है, सब बुल मार दिए। और ये जो गना उठाने वाले तीन पहिए वाले सुख रहे, ये तो आदमियों का पेट काट रहे हैं। पहले 10-20 आदमी कुछ गना उठा तो पेट होगा, तो 50 आदमी का काम वो भूज करता है तीन पहिए वाला। और आदमी क्या करता है, कुछ भी नहीं करता, बेकार बैठा बैठा शराब पीता, टाइम खराब करता। पहले मेहनत करता था, अब मशीनें मेहनत करती है आत्म का, एक आदमी बैठा ऊपर ऐसे करता। तो नकुल को बताया कि हाँ महाराज से मिलना है, लेकिन समस्या यह है कि गाय ने बछड़ी को जन्म दिया। होना तो यह चाहिए था कि बछड़ी को गाय चाटती और गाय दूध पिलाती, लेकिन गाय बछड़ी को खा गई। गाय बछड़ी को खा गई, अरे ऐसी कभी हुआ नहीं है। हाउ कैन काय काउ ईट्स दी काफ, बछड़ी को खा गई, ये तो संभव नहीं। बोला हाँ हो गया, तो महाराज के पास चलना पड़ेगा। अच्छा, सहदेव खड़ा था चौथे दरवाजे के ऊपर, प्रश्न पूछा उससे भी, महाराज से मिलना क्या समस्या है। बोला समस्या ये है, रास्ते से आते हुए मैंने देखा एक आदमी खड़ा था, हाथ में एक नीडल थी और नीडल की जो आई है उसके अंदर से हाथी को डाला और हाथी पूरा निकल गया। लेकिन हाथी की पूंछ अटक गई. सरप्राइजिंग. मैं बता रहा हूं, सुई के नीडल के होल के अंदर से एलिफेंट पास हो गया एंड टेल एलिफेंट की अटक गई. कैरी टेल फिनिश. संभव महाराज से मिलना चाहिए. अब दो घंटे पूरे होने वाले थे, कर्टेन के पीछे महाराज बैठे थे और ये बोलते महाराज महाराज बहुत बड़ी समस्या है. महाराज तो ध्यान में डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, फिर भी बोलता है मैं रास्ते से आ रहा था, रास्ता पहाड़ का था और पहाड़ के रास्ते में चलने के लिए सिर्फ एक पगडंडी थी. पगडंडी समझते हैं ना, पग का मतलब पांव, डंडी का मतलब एक डंडे की तरह सिर्फ एक लाइन से सिर्फ एक पांव दो पांव रख सकते हो, दो आदमी साथ नहीं चल सकते. पहाड़ों के रास्ते में पगडंडियां फुला रहे हैं, जमाने में बोलते पगडंडी के ऊपर चलना, जैसे दो खेतों के बीच में ऐसे थोड़ा सा पगडंडी बनाते उसके ऊपर चलते हैं, पानी होता है सब. तो पगडंडी थी केवल पहाड़ों के रास्ते में. फिर साइक्लोन तूफान आया, पहाड़ों के पत्थर गिरे और पगडंडी का रास्ता भी बंद हो गया, आना जाना बंद हो गया. फिर महाराज एक साधु कहीं से आया अचानक, उसने अपने गमछे से एक धागा निकाला, एक थ्रेड निकाला, पहाड़ को ऐसे बांध के ऐसे किया, पत्थर हट गया, रास्ता खुल गया. समझ गए महाराज ने कहा इसको पकड़ो, जाने मत देना, पकड़ना पकड़ना. तब तक ये तो भाग गया, आदमी भागा, सब पीछे भागे, लेकिन आदमी मिला नहीं किसी को. चार भाई आ गए महाराज युधिष्ठिर के पास. महाराज युधिष्ठिर ने कहा इसको पकड़ो पकड़ो. बोला महाराज इसको पकड़े वो तो पता नहीं कहां चला गया, ये कैसे हमसे प्रश्न पूछ रहा था, आपसे भी कोई प्रश्न पूछा? बोला हाँ मुझसे भी प्रश्न पूछा. बोले कौन था ये, उसके प्रश्न क्या है, हमको ये समझाइए महाराज. युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ये कलयुग था, ये आदमी कलयुग था, ये कलयुग प्रश्न धर्म के घर में आया था ये बताने के लिए कि अब अधर्म का राज होने वाला है. नहीं महाराज इसका अर्थ क्या है? भीम ने पूछा. मेरे को तो उसने कहा था खेत को फेंसिंग खा गई, इसका क्या अर्थ है महाराज? बोला कलयुग ये कह रहा था जिसको प्रोटेक्शन के लिए आप रखोगे वही आपको मारेगा. कलयुग में जिसको आप अपना बॉडीगार्ड बनाओगे, इंदिरा गांधी को किसने मारा? उसके बॉडीगार्ड ने. जिसी को आपने रखा है कि मेरी रक्षा करना उसी ने गोली मारी, उसको कोई परेशान नहीं थी, साथ ही खड़ा था, कहीं से चुपके भी नहीं मारनी थी. तो कलयुग में जिसको रक्षा के लिए रखा है वही आपका भक्षण करेगा. सरकार हमारी रक्षा के लिए है ना, आगे इतना टैक्स बढ़ाएगी, इतना टैक्स बढ़ाएगी कि लोग पागल हो जाएंगे, कहां जाए कहां जाए. अभी प्रभुपाद जी तो अभी भी इसके लिए कहते हैं, आजकल के पॉलिटिकल लीडर ये जो कहते हैं हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, वो तो इलेक्शन से पहले करते हैं, इलेक्शन के बाद सब कुछ अपने लिए करते हैं, दुनिया के लिए कोई कुछ नहीं करता. और सारे लोगों से टैक्स लेते हैं, सब लोग टैक्स तो भरते हैं ना, कोई ना कोई टैक्स थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से भरते हैं ना. वो सब टैक्स कहां देते हैं? डिवाइड अमंग देमसेल्फ एंड ईट अवे. पब्लिक के लिए तो कुछ भी नहीं करते. ये बाढ़ खेत को खाएगी, जिसको प्रोटेक्शन के लिए रखा जाएगा वही आपका रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, पोषण करने वाला शोषण करेगा, पोषण करने वाला शोषण करेगा. इसका मतलब प्रोटेक्ट जिसको करना था वही आपको दुख देके परेशान करेगा. कभी हम ये कथा बताते हैं हमको बहुत पुरानी बात याद आती है. पाकिस्तान में एक बार एक अखबार में आया था, न्यूज़पेपर में, डाकू ने बस को लूटा और लूटने के बाद सब पैसे वापस कर दिए यात्रियों को, और नीचे लिखा था क्यों. आप समझे मैंने कहा था क्यों के नीचे लिखा था, डाकुओं ने कहा सारी बस से 16,000 रुपए मिले हैं और इस डाके के लिए हमको पुलिस को 20,000 देने पड़ेंगे, 4,000 घर से देंगे क्या? तो अपने थोड़ा हजार वापस ले जाओ, कम से कम हमको घर से तो नहीं देने पड़ेगा. बच्चा अचानक रोने लगा घर में, हाँ कोई चवानी थी मुंह में चली गई। चवानी समझते हो? चवानी तो नहीं आपको नाम, रुपया, रुपया समझते हो ना, गोल गोल उसके चार टुकड़े होते थे उसको चवानी पहले बोलते थे, अभी क्या बोलते हैं 25 सेंट। वो बच्चे के यहां गले में चला गया, आप तो बड़ा परेशान रोड पे खड़ा है अस्पताल जाने के लिए। तो रसिक से वहां गाड़ी में जाते हुए खड़ा हो गया, बोला क्या बात है, बोला पैसा खा लिया, बोला इधर ना, उसको ऐसे उल्टा पांव से पकड़ के इधर गर्दन पे मुक्का मारा, चवानी बाहर गिरी। भैया तो बहुत अच्छी डॉक्टर हो, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बोला मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, पैसा पैसा कहीं भी छुपाओ मैं निकाल के दिखाऊंगा। जायदाद में छुपा मैं निकाल से ना? तो प्रभुपाद जी कहते हम ऐसे साधु हैं, आप कैसे भी एक बार मंदिर में आओ, हरे कृष्ण आपको जपा के छोड़ेंगे, छोड़ने वाले नहीं है, आप आ गए हैं तो हरे कृष्ण जपना ही पड़ेगा। बोली हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा,
हरे हरे,
हरे राम,
हरे राम, राम राम,
हरे हरे।
एक जमाने में पढ़ो अर्ली 73 में प्रभुपाद ने एक भक्तों का इच्छा था तो एक पार्टी बनाई थी पॉलिटिकल, इन गॉड वी ट्रस्ट, इन गॉड वी ट्रस्ट, भगवान में हम विश्वास करते हैं। उनका कहना था अल्टीमेटली ये जो भी दुनिया की गवर्नमेंट है चाहे एक हो या दूसरी हो, ये सब जनता को सुख देने के लिए नहीं है, ये बाढ़ खेत को खाने वाली है, दिस फेंसिंग इज गोइंग टू डैमेज दी फील्ड, इसलिए हमें भक्तों का राज आगे आएगा तो भक्त लोगों का सुख करेंगे, भक्त लोगों को सही रास्ते पे लगाएंगे। जब भी कोई टाइम आना चाहिए जब भक्त शासन में आए, और दो अमेरिका में कैंडिडेट, एक ऑस्ट्रेलिया में, वो रैलिंग भी निकाली, कीर्तन भी किया, प्रसाद भी बांटा, स्वीट बाल, 500 वोट भी मिले एक को, प्रभुपाद दिस इज गुड, 500 पीपल वोटेड फॉर कृष्णा, दे विल बी बेनिफिटेड। सो अल्टीमेटली कहने का अर्थ है कि ये कलयुग के अंदर प्रोटेक्शन जिसको रख दिया है ना, वो ही हमारा नुकसान ज्यादा करता है, ये कलयुग की पहली पहचान है। तब अर्जुन बोल रहा है मुझे कहा उसने कुएं से एक बाल्टी निकाली, 9 भर गए, 9 से एक वापस नहीं भरी। बोला ये कलयुग कह रहा था, पहले घर में एक आदमी कमाने वाला होता था पिताजी, 9 बच्चे भाई परिवार 9 होता था, 9 का पेट पालता था, 1 पर्सन वॉज मेंटेनिंग 9 पर्सन इन ए फैमिली, एक कमाता था 9 को खिलाता था। अब कल जो कहता है 9 इकट्ठे होके कमाएंगे और एक बाप बीमार हो गया तो भी पेट भर के नहीं खिलाएंगे, बोले बाहर निकालो अस्पताल ले जाओ, धर्मशाला में छोड़ के आओ, ओल्ड एज छोड़ के आओ। ये कलयुग की दूसरी पहचान है। आप लोगों में किसी को अनुभव है कि एक एक पिता कमाता था और घर के 8 आदमी खाते थे कि नहीं खाते थे? अब 8 के 8 कमाते हैं ना, तब भी एक घर में बूढ़ा होगा तो उसको खिलाने की दिल नहीं करेगी, बाहर हो तो ठीक है कहीं छोड़ के आओ इसको, ऐसा लोगों का मन का भाव हुआ है कि नहीं हुआ? ये कलयुग की पहचान है। और हम जब ये कथा कहीं कहीं तो लोग, एक आदमी रोते हुए मुझे कहा कि हमारे पिता, हम 7 भाई थे, 7ों की शादी कराई, 7ों को घर बना के दिया, 7ों को दुकान, 7ों को खुला के दिया, लेकिन बाप बीमार वक्त 7ों में से एक ने भी उसकी देखभाल नहीं की और उसको ओल्ड एज होम में छोड़ के आए थे। ये कल चुकी थे, ओल्ड एज होम का मतलब बदमाश बच्चों का, बदमाश बच्चे जो अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करते, ओल्ड एज होम की डेफिनेशन ये है, रास्कल चिल्ड्रन नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर एल्डर्स। और क्या अच्छा नाम उसका क्या भी, तो ओल्ड एज होम थोड़ी, ओल्ड एज होम कोई होम थोड़ी होता है, ये बूढ़े बुजुर्ग कोई देखता नहीं। और हम ये समझते हैं कि हम कभी बूढ़े होंगे ही नहीं, अरे ये हम अपने बूढ़ों को निकालेंगे तो हमारे बूढ़ों को भी, तो हम अभी तो बूढ़े होंगे, हमको भी तो कोई निकालेगा ना। वाई नॉट टू टेक केयर ऑफ द एल्डरली पीपल और प्रभुपाद ने एक भागवत नहीं पोपट में श्रीमद भागवत में पोपट में लिखा है कि एल्डरली पीपल शुड बी टेकिंग केयर फॉर देयर स्मूथ जर्नी बैक टू गार्डन इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ देम देयर सिविलाइजेशन इज नॉनसेंस बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए दिल से सम्मान करना चाहिए सेवा करनी चाहिए बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से बल बढ़ता है विद्या बढ़ती है यश बढ़ता है बल विद्या यश कीर्ति सब बढ़ता है और जो बड़े बुजुर्ग को नहीं करता है उसका ये सब नाश हो जाता है ये नीति शास्त्र के नियम है तब नकुल ने कहा महाराज हमसे भी कहा कि गाय ने बछड़ी को जन्म दिया और गाय ने बछड़ी को खा लिया ऐसे तो कभी हुआ नहीं बोला ये कहना चाह रहा था कलयुग कि कलयुग के लोग लड़की का जन्म होने से पहले ही उसको मार देंगे अब ये गर्भवती स्त्री का पहले जाके अल्ट्रासाउंड में दिखाते हैं पूछते हैं लड़का है तो लड़की है लड़का है तो रहने दो लड़की है तो एबॉर्शन कर दो ये हो गया गाय का बछड़ी को खाना हेनियस क्राइम है लेकिन हो रहा है पूरी दुनिया में हो रहा है मां अपनी बच्ची को मार रही है आंखों के सामने ये कलयुग का ये एक नया नंगा नमूना है अब तो लड़का लड़की का कोई भेद नहीं रह गया अभी तो सबको ही मार रहे हैं सरेआम मां अपने बच्चों को मां बाप मार रहे हैं और क्या है इसका एबॉर्शन और क्या है और लीगल कर दिया गवर्नमेंट कलयुग ये कलयुग की निशान और ये 5000 साल पहले की बात है कलयुग कैसे करेगा तब सहदेव ने कहा मुझसे कहा कि हाथी सुई के होल से निकल गया पूछ अटक गई बोला कलयुग कहता है बेटे की शादी होगी तो 100,000 200,000 500,000 शिप में भी करके आएगा लेकिन साधु ने कह दिया कि जन्माष्टमी के लिए 500 रुपया दो तो बोलेगा नहीं अभी पैसा नहीं है पूछ अटक जाएगी हाथी पूरा निकल जाएगा 10 रुपया भी भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा और 10 लाख रुपया बेकार का लोगों को शराब पिला के खिला के टाइम खराब कर देगा ये कलयुग का दूसरा पहचान है पीपल स्पेंड अनलिमिटेड मनी अननेसेसरी फॉर सो मेनी नॉनसेंस थिंग्स पर अच्छे काम के लिए भगवत गीता ले लो 200 रुपये नहीं नहीं प्रभु जी हमारे घर में पड़ी है अरे तेरे घर में तो पहले भी अलमारी पड़ी है दूसरी क्यों लेता है मेरे बेटे के लिए तो एक बेचारे बेटे के लिए गीता ले लो ना नहीं नहीं अलमारी तो हमारी मेरी और मेरी पत्नी की अलग है लेकिन गीता हम दिन में एक में पड़ेगी ये हाथी निकल गया और पूंछ अटक गई खिलाएंगे सबको खिलाएंगे लेकिन साधु महात्मा की सेवा करने को बोला भगवान की सेवा करने को बोला बीमार हो जाएंगे अभी अच्छे सेठ के पास जाओ मांगने के लिए तो बोले सेठ बैठा होगा सीट के ऊपर बोलेगा अभी आदमी नहीं है तो सेठ अभी नहीं अपने आप को बोलेगा मैं नहीं हूं ऐसे बोलेगा तो वो हिंदी भाषा में बोलता है आदमी अभी नहीं है तो भक्त भी कभी कभी भक्त भी ऐसे सरफड़े होते हैं ना बोला तुम ही छोड़ने के लिए आदमी बन जाओ ना गधा है क्या साधु को देख के लोग ऐसे डरते हैं कभी कि क्या मांगेगा वो टेबल के नीचे छुप गया तो वहां जाके साधु ने कहा अब बाहर निकलो नहीं देना है तो कोई बात नहीं प्रसाद खाओ लेकिन कहां कब तक ही टेबल के नीचे पड़े रहोगे तो ये कलयुग में हाथी निकल जाएगा पूछ अटक जाएगी लाखों रुपए खर्च बेकार में करेंगे कपड़ों के ऊपर कितना खर्च होता है एक ये श्लोक भगवत गीता का जो है वासांसि जननानि यथा व्याहाय इसका अर्थ क्या है जैसे पुराना कपड़ा आदमी बदल के नया कपड़ा पहनता है ऐसे ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेता है हमारा इसके ऊपर अनुभव ये है जितने तुम्हारे घर में ड्रेस है उतने तुमको जन्म लेने पड़ेंगे इसलिए साधु केवल उन्हीं जोड़ी जोड़े रखते थे एक धोता था दूसरा पहनता था मैं ये कथा बेंगलोर में की और एक भक्त हमारा मित्र था आया मेरे पास मुझे बोला मेरी पत्नी का क्या होगा अलमारी सारी उनकी भरी हुई है
ریئلائزیشن ہی ہے اصل میں. زیادہ کپڑے رکھتے اس کا مطلب اتنے شریر تمہیں لینے کا شوق ہے کیا؟ ارے سادھو تو پہلے بولتے تھے لوٹا اور لنگوٹا, بس لوٹا پانی پینے کا لیا اور لنگوٹا کا مطلب ایک انڈر کپڑا اور ایک اوتری بس ہو گیا. بہوپال سوئم ایک دھوتی دھو کے رات کو سکھاتے تھے اور صبح دوسری پہنتے تھے. بس ٹو از میکسیمم. ابھی تو جتنے زیادہ رکھیں گے اتنا اپنے سمپلسٹی کے اوپر آنا چاہیے, کم سے کم میں کام چلانا چاہیے. کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ, اس نہ لیجیے دوسرے کو دکھانے کے لیے لیتے, اپنے لیے بھی لیتے. دوسرا دیکھیے گا میں اس سے اس چار دن کہتا یہ ساڑی آدمی تھی یہ ساڑی پہن کے جاؤں, کیا فرق پڑے گا؟ تم اپنا گھر کیوں جلا چاہے گا؟ ضرورت کیا ہے اس کی؟ صرف دیکھا دیکھیے اتنی بیماری آ گئی ہے, اتنی بیماری آ گئی, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. تب مہاراج یدھشٹھر نے کہا, سب نے کہا آپ سے کیا پوچھا مہاراج؟ بولا ہم سے پوچھا کہ راستہ بند ہو گیا تھا, پہاڑ کا راستہ تھا, طوفان آیا تھا, چھوٹا سا راستہ, اس کے اوپر پتھر گر گئے. ایک ویکتی نے سادھو آیا, گمچا سے ایک دھاگا نکالا, پتھر کو ہٹایا, پتھر دور پڑا ہو گیا, راستہ کھل گیا. مہاراج اس کا کیا ارتھ ہے؟ پوچھنے لگے بھکت چار بھائی. مہاراج یدھشٹھر کہتے ہیں کل جو کہنے والا تھا مجھے دھرمراج کو کہ کل جگ کے اندر ایک تو ایک ہی پتلا راستہ بھگوت پراپتی کا ہے, اس کے اوپر بھی بہت سے پتھر گرے ہوئے ہیں, لیکن اگر کوئی سادھو مل جائے گا تو وہ راستہ آسانی سے کھول دے گا اور تم بھگوان کے دھام جا سکتے ہو. سادھو کی سنگ سے کیول بھگوان کے نام جپنے سے کل جگ میں بھگوان کی پراپتی ہو سکتی. تو یہ لاسٹ سندیش دھرم کو کل جگ نے دیا. کل یوگ کا مرتھ ہے, کل یوگ کا ارتھ کیا ہے؟ کلہ. کلہ کا مطلب جھگڑا. کلہ مینس کوارل. یوگ مینس ٹائم ان وچ ایوری بڈی کوارلز فار نتھنگ. تھوڑی سی بات کے اوپر جھگڑا ہوتا رہے گا, یہ کل یوگ کی ڈیفینیشن. لیکن ایک اور بھی ارتھ ہے کل یوگ کا. کلیتے کا کیشو کا مطلب کیشو, لیتے مطلب جو لا کے دے, جو آسانی سے بھگوان کو دے دے گا. کلیوگ کا دوسرا ارتھ ہے جو بھگوان آسانی سے مل جائے, جس ایسا یوگ جس میں بھگوان بہت آسانی سے مل جائے. کیشو لیتے اتی کلی, جو کیشو کو بہت آسانی سے, کرشن کو بہت آسانی سے دے دے. تپسیا کرنے کی ضرورت نہیں, یگیہ کرنے کی ضرورت نہیں, پوجا پاٹھ میں پھنسنے کی ضرورت نہیں, کیول ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے, ہرے رام 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 ہرے ہرے, بس بھگوان مل گیا. یہ کلیوگ کا سب سے بڑا لابھ ہے کہ بھگوان کے نام اچارن کرنے سے کلیوگ میں بھگوان کی پراپتی بہت سرل ہو جاتی ہے. اور یہ شکشا بھاگوت میں سکھدیو گوسوامی دیتے ہیں. کلیوگ دوشوں کا ساگر ہے, استھی ایکو مہاگن, ایک مہاگن ہے کلیوگ کا. کیرتن کرشنسیہ, بھگوان شری کرشن کا کیرتن, یہ بھگوان شری کرشن کا شبد بھاگوت میں سکھدیو کے مکھ سے نکلا ہے. کرشنسیہ کیرتن, بھگوان شری کرشن کا کیرتن کرنے کے لیے, یہ سکھدیو گوسوامی کہتے ہیں بھاگوت میں. برہما جی نارد کو یہ شکشا دے رہے ہیں کلی سنترن اپنشد میں, ہرے کرشنا 16 اکشر کے منتر کا اچارن کرو اور کل یوگ کے سارے پاپوں سے اپنے آپ کو پار کرو. اور شری چیتنیہ مہاپربھو سوئم راجا کرشنا جگل مورتی کے روپ میں آ کر کہتے ہیں ہرے کرشنا منتر, ہری بولو سب لوگ, ہری اے بھکشا مانگے, یہ بھکشا مانگو, ہے نتیانند ہے ہری داس, گھر گھر جاؤ لوگوں سے یہ بھکشا مانگو, ہری بولو, اے بھگوان کا نام بولو, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, یہی بھکشا دو کہ بھگوان کا نام لے لو, ہری نام لے لو, کرشن کیشو بولو, اپنا جیون کل یوگ میں سفل کرو. سو ہم بھی آپ سے یہ پرارتھنا کرتے ہیں پربھوپاد جی اور اسکان سنستا کے بھی آپ کے اوپر کہ آپ بھی اپنا جیون سفل کیجئے, ہرے کرشن نام جپیے اور کل یوگ کے ان اپرادھوں سے اپنے آپ کو مکت کیجئے کیول ایک بھگوت نام کے اچارن کے دوارا. بہت بہت دھنیواد. ہرے کرشن. کسی کا کوئی پرشن ہے, کسی جگیاس ہے, اینی کوشچن اور کمنٹ؟ آئے گھنٹے ہونے میں ابھی کچھ منٹ ہے. اینی کوشچن کمنٹ؟
किसी का कोई जिज्ञासा? श्याम, किसे कोई प्रश्न है? नो? श्री हरि बोलिए।
मैंने देखा है कि पहले जो भगवद गीता है अंग्रेजी का जो अनुवाद है ट्रांसलेशन श्लोक और अभी जो निकला है अभी जो विश्व राज ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड में डिफरेंस प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया है उसका वर्ड चेंज हो।
ये तो एडिटर से पूछना चाहिए जो बीबीटी एडिटर है, लेकिन वो एक्सप्लेन ये करते हैं कि उस वक्त हम कुछ संस्कृत शब्दों को सुनने से समझ नहीं पाए थे, तो अभी उनको दोबारा जब हम सुनते हैं तो हमको अभी क्लियर होता है कि कहां से क्या लिया है, तो उसको उसकी राइट मीनिंग के लिए ऐसे किया है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था जो प्रभुपाद के समय में था उसको रह के आपको नीचे से फुटनोट में लिख देते कि ये इसको ऐसे होना चाहिए था, तो ये एडिटर अब उसको दोबारा सुनते हैं तो उसमें संशोधन कर रहे हैं ऐसे। लेकिन मैं कोई खास चीज में परिवर्तन इसलिए नहीं, कोई ऐसे थोड़ी कहते हैं कृष्ण भगवान नहीं है और कोई भगवान है, ऐसा तो कोई परिवर्तन किया नहीं है, कोई शब्दों के अर्थ में थोड़ा सा और क्लियर करने का प्रयास किया है कहीं, वो भी पुराने उसी टेप्स के आधार के ऊपर, लेकिन उसको ज्यादा समझदारी से समझने का प्रयास किया। हरे कृष्ण आइए और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, कोई प्रश्न नहीं। हरे कृष्ण आओ बेटा।